नमस्कार भारत, आज है नवंबर महीने की पहली तारीख, दिन शुक्रवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच औपचारिक तौर पर शुरू करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी।
President who says I can do whatever I want, not so. And if you think that's so, and you...
पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचा इमरान खान के लिए कितनी बड़ी है चुनौती।
इस मुल्क की गैरतमंद आवाम आज भी किसी कठपुतली के सामने अपना सर झुकाने को तैयार नहीं है।
बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में और मध्य प्रदेश में मुर्गी के अंडों की वजह से पैदा हुआ विवाद, सब विस्तार से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ औपचारिक तौर पर महाभियोग की जांच शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को अमरीकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये प्रस्ताव पारित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमरीका के इतिहास का सबसे बड़ा विच हंट बताया है। इराक में सरकार विरोधी विशाल प्रदर्शन जारी है। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए राजनीतिक सुधारों की पेशकश की है। कई हफ्तों के बाद सालेह ने टीवी पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री अब्दुल महदी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पर संसद की भी सहमति होनी चाहिए। सालेह ने कहा कि वो जल्दी चुनाव कराने के लिए अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश कर सकते हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम जल्दी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। मैं एक नए चुनावी कानून और नए चुनाव आयोग को भी मंजूरी दूंगा। ये थे इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह के शब्द। इराक में हो रहे इस सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पिछले महीने से लेकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो देश में बढ़ती बेरोजगारी, खराब सार्वजनिक सेवाओं और बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मेहदी के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स हेल्थ OIE के प्रमुख डॉक्टर मार्क शिप का कहना है कि लगातार फैलते अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की वजह से दुनिया के लगभग 1/4 सुअरों की मौत हो जाएगी। डॉक्टर शिप ने कहा कि इस वजह से खाने की कमी और पोर्क की कीमत में बढ़त की आशंका है। ये बीमारी एशिया से फैलना शुरू हुई है और इसके कारण चीन की पोर्क इंडस्ट्री तबाह हो गई है। OIE की महानिदेशक मोनिक एलायट ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसे दूसरे क्षेत्रों में फैलने से रोकना।
Donc, en fait, on est vraiment face à une menace qui est mondiale.
हम वाकई एक वैश्विक खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ उन देशों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो पहले से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, बल्कि हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि बीमारी दूसरी जगहों पर ना पहुंचने पाए। ये थे OIE की महानिदेशक मोनिक एलॉयट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इस्लामिक स्टेट ने अपने नेता अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की है और उनके उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। IS ने मैसेजिंग सर्विस टेलीग्राम के जरिए बताया है कि अबू इब्राहिम अल हाशमी उसके नए नेता होंगे। अबू इब्राहिम अल हाशमी अमरीकी सुरक्षा बलों के लिए कोई परिचित नाम नहीं है। इस्लामिक स्टेट ने अपने नए नेता के बारे में ज़्यादा ब्यौरा नहीं दिया है और न ही उनकी कोई तस्वीर जारी की है। स्पेन की एक अदालत ने 14 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार करने वाले 5 पुरुषों को बरी कर दिया है। अदालत ने 5ों पुरुषों को बलात्कार का दोषी न ठहराकर सिर्फ यौन उत्पीड़न का दोषी माना है। अदालत का कहना है कि चूंकि लड़की ने शराब पी हुई थी और पुरुषों ने उसके साथ मारपीट नहीं की, इसलिए इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। इस फैसले पर स्पेन और दुनिया भर में बलात्कार से संबंधित कानूनों पर बहस ने जोर पकड़ लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि दक्षिणी अफ्रीका में 4.5 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। मैं हूं संदीप सोनी। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में झटका लगा है, जहां उनके खिलाफ महाभियोग की जांच के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों की पड़ताल करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप है। हालांकि ट्रंप ने इस आरोप को खारिज किया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधु वासनी से।
House Calendar Number 52, House Resolution 660, resolved that the Permanent Select Committee on Intelligence, the committees on.
ये थी अमरीकी संसद के निचले सदन की क्लर्क ऑफ द हाउस सुजन कोल। सुजन ऐलान कर रही थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं, इसकी जांच जारी रहेगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जाँच औपचारिक तौर पर शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मंजूरी मिली है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप के खिलाफ हो रही जांच सार्वजनिक चरण में पहुंच जाएगी। डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए समर्थन जुटाने की ये पहली औपचारिक कोशिश है। इस प्रस्ताव में ये भी तय कर दिया गया है कि ट्रंप के वकीलों के पास क्या हक होंगे। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों की पड़ताल करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके किए के लिए जिम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए।
We are keeping the republic from a president who says I can do whatever I want.
हम अपने देश को एक ऐसे राष्ट्रपति से बचा रहे हैं जो कहते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी इस सोच के सहारे चल सकते हैं, तो ये अमेरिका के संविधान का उल्लंघन है। इसलिए मैं तथ्यों के साथ आगे बढ़ूंगी। ये सच और संविधान का सवाल है। हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी। राष्ट्रपति ट्रंप खुद पर लगे आरोपों को शुरू से नकारते रहे हैं। हालिया प्रस्ताव को उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा विच्छंट बताया है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी के विप स्टीव स्केलिस ने प्रस्ताव मंजूर होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे डेमोक्रेट सांसदों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुनाव ना जीत पाएं।
We're an important point in history. Clearly there are people that we serve with that don't like the results of the 2016 election.
हम इतिहास के एक अहम मोड़ पर हैं। ये स्पष्ट है कि ऐसे लोग भी हैं जो 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से खुश नहीं हैं। खुश होना या ना होना उनका अधिकार है, लेकिन ये देश अगले साल तय करेगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। नैन्सी पेलोसी और मुट्ठी भर लोग ये तय नहीं करेंगे कि हमारा राष्ट्रपति कौन होगा। ये थे रिपब्लिकन पार्टी के विप स्टीव स्केलिस के शब्द। इस प्रस्ताव के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच अब अगले चरण में पहुंच गई है, जिसका नतीजा उनके खिलाफ महाभियोग कार्यवाही की सिफारिश के रूप में हो सकता है। अगर ऐसा हुआ और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसका समर्थन किया, तो अमरीकी संसद के उच्च सदन सीनेट में ट्रंप के खिलाफ सुनवाई का रास्ता साफ हो जाएगा।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार के खिलाफ इस समय एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इसे आज़ादी मार्च का नाम दिया है। जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान इस आज़ादी मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान की लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां इसे अपना समर्थन दे रही हैं। कराची से शुरू हुआ ये आज़ादी मार्च बीती रात इस्लामाबाद पहुँचा, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने प्रदर्शनकारियों को कुछ इस तरह से संबोधित किया।
जिस बहादुरी के साथ आपका काफिला कराची से निकला और इस मुल्क के छोटे और बड़े गांवों में शहरों से गुजरते हुए इस्लामाबाद بات پہنچ چکا ہے اس ملک کی بہادر اور غیرت مند عوام آج بھی کسی کٹ پتلی کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھیکش بلاول بھٹو زرداری۔ اس خبر پر اور جانکاری کے لیے میں نے اسلام آباد میں موجود بی بی سی اردو سیوا کے سہیوگی سید حسین سے بات کی اور پہلا سوال یہی پوچھا کہ راجدھانی اسلام آباد میں تازہ صورتحال کیا ہیں۔
ملک بھر سے جو قافلے روانہ ہوئے تھے چار دن پہلے، تین دن پہلے، مختلف صوبوں سے، شہروں سے، وہ آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے جو چیف ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ بھی آج ادھر پہنچ گئے ہیں۔ قافلوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے جس جگہ پر انہیں پہنچنا تھا۔ روٹین لائف جو ہے اسلام آباد میں وہ کافی ڈسٹرب ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے مختلف کنٹینرز جو ہیں وہ اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں، چوکوں اور چوراہوں پر لا کر رکھے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے اندر خلل پڑ رہا تھا۔ لیکن آج چونکہ جلسہ جو ہے مین، وہ جلوس جو ہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، تو اس کے بعد مختلف جو مرکزی شاہراہیں ہیں ان کو بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ کے 5 سے 6 کلومیٹر کے اندر انٹرنیٹ کی سروس ہے، وہ مکمل طور پر کل رات 8 بجے سے بند ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے عوام کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کل بھی بند رہیں گے، اسی طرح جو سسٹر سٹی ہے اسلام آباد کی راولپنڈی، وہ بھی بہت متاثر ہے اس سے۔
یہ بتائیے کہ کیا اس آزادی مارچ کی وجہ سے پردھان منتری عمران خان اور جو ان کی سرکار ہے ان پر کسی طرح کا دباؤ بنتا نظر آ رہا ہے؟
پاکستان میں حزب اختلاف کی تمام پارٹیز اور حکمران جماعت جو ہے وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا کے مطالبات کیا سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد پتہ لگ پائے گا کہ حکومت اس پہ کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے۔ فی الحال تک جو حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے، اس کے سربراہ جو ہیں وہ ایک فیڈرل منسٹر ہیں، حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، عمران خان سے کافی نزدیک ہیں۔ وہ بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کسی صورت منظور نہیں کیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کوسچن بات ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ اس آزادی مارچ کے بابت پاکستان کی جو عوام ہیں اس میں کس طرح کی چرچائیں ہیں، وہ اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟
اسلام آباد اور پنڈی کی عوام کی بات کریں گے تو وہ تو اس دھرنے کی وجہ سے، ان کی جو موومنٹ ہے اس کے وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ اوور آل جو ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی پی ایم ایل این جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے رہنما نواز شریف اور اس کی تمام جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، مقدمات کا ان کو سامنا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے نمبر کی پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، جو سابق صدر بھی ہیں پاکستان کے، وہ بھی جیل میں ہیں اس وقت، ان کو بھی مقدمات کا سامنا ہے۔ تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور اس کے کارکنان تو بہت عرصے سے حکومت کے خلاف گلہ شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو مولانا آئے ہیں وہ کس حد تک وہ ان کے ہم آواز بنیں گے اور ان کے مطالبات کو لے کر آگے چلیں گے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔
آزادی مارچ کے بارے میں جانکاری دے رہے تھے اسلام آباد سے بی بی سی سنواد داتا سید حسین۔ پاکستان میں بیتے روز کراچی سے راولپنڈی جا رہی تیزگام ایکسپریس میں آگ لگنے سے کم 74 لوگ مارے گئے ہیں۔ ٹرین میں سوار ایک مسافر نے بی بی سی سنواد داتا فرحت جاوید کو بتایا۔
تو راستے میں آپ سوئے ہوئے تھے، صبح کا ٹائم تھا اور ایک دم آگ لگ گئی، باقی کی ایک سر طرف سے لگی تھی، اور ایک دم اتنا دھواں ہو گیا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر ہم نے جس طرح، پہلے میں نے اپنی وائف کو باہر نکالا، اور اس کے بعد پھر میں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، پھر میرے اوپر آدمی آ گئے اور میں پاؤں جو ہے میرے اس کے نیچے دب گیا۔ پھر جب ٹرین رکی میں پھر اس کے نیچے اترا اور میرے ٹانگوں پہ اور یہ ہاتھ جل گئے، اور ابھی علاج شروع ہو رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔
جب آگ لگی تھی تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آیا تھا جب آپ نے اتنی آگ کو اتنا دھواں دیکھا؟
پہلا سب سے خیال یہی آیا کہ اپنی وائف کو بچانا، اور میں نے اپنی وائف میں سوئی ہوئی تھی اور میں تھوڑا سا سویا ہوا تھا، وہ جاگ رہا تھا، مجھے ایک دم پتہ چلا، میں اپنی وائف کو باہر نکالا۔
ادھر پاکستان کے ریل منتری شیخ راشد احمد کا کہنا ہے کہ ٹرین میں مسافروں کا ایک سموہ گیس سلنڈر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جس کے پھٹنے سے ٹرین کے ڈبوں میں آگ لگی اور 74 लोग मारे गए। और आइए दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियां क्या बयां कर रही हैं बताने के लिए सिंधु वासनी स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके हाथ में तमाम अखबार हैं।
संदीप, व्हाट्सएप के जरिए भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि व्हाट्सएप के जरिए पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इन सब की जासूसी हो रही थी, एक लंबी लिस्ट है। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप से निजता के उल्लंघन मामले में जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सप्रेस में इसी विषय पर उन्नी का बनाया एक कार्टून भी है जो बड़ा दिलचस्प है। कार्टून में एक व्यक्ति पिंजरा सा लिए हुए खड़ा है और पिंजरे पर लिखा है श्रीनगर। व्यक्ति के हाथों में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है यहाँ आइए, यहाँ कोई जासूसी नहीं होगी, यहाँ व्हाट्सएप नहीं है और तो और यहाँ इंटरनेट ही नहीं है। तो जासूसी की खबर और कश्मीर के हालात दोनों को
बहुत सुंदर तरीके से मिला दिया।
एक और खबर कश्मीर से ही जुड़ी जो एक्सप्रेस में है और काफी चिंताजनक है, गंभीर है। 11 साइकाइट्रिस्ट और मनोवैज्ञानिकों की एक टीम कश्मीर गई थी 5 अगस्त के बाद हालात का जायजा लेने के लिए। अब उस टीम ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया है कि वहाँ लॉकडाउन के बाद से लोगों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। स्ट्रेस, घबराहट, ट्रॉमा और एंग्जाइटी के शिकार हुए हैं लोग।
लगभग 3 महीने का वक्त हो चला है
जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई अखबारों में खबर है, प्रमुखता से ये खबर छापी अखबारों ने, कि निर्भया गैंगरेप के अभियुक्तों के पास अब राष्ट्रपति के पास दया याचिका देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। अखबार लिखता है कि तिहाड़ जेल के प्रशासन ने गैंगरेप के सभी अभियुक्तों को बताया है कि उन्होंने सभी कानूनी रास्ते आजमा लिए हैं अब तक और सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो है राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजना। ये दया याचिका दाखिल करने के लिए उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इन्हें मौत की सज़ा सुना चुकी है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसले की समीक्षा की अर्जी डाली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर का जिक्र करूंगी संदीप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुल कावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बताया कि वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसी नागरिक को राजनयिक पहुंच या कौंसुलर एक्सेस से दूर रखा जाए। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत को जाधव की गिरफ्तारी की सूचना देरी से दी। पाकिस्तान ने करीब 3 हफ्ते बाद बताया था जबकि वियना संधि कहती है कि ये जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए।
अच्छा सिंधु, महाराष्ट्र की राजनीति की खबरें अखबारों में कहीं नजर आ रही हैं?
हाँ, कई अखबारों में है, जैसे कि दैनिक जागरण की खबर है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच गतिरोध है, इस बीच दूसरे विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने NCP के शरद पवार से मुलाकात की है और अखबार लिखता है कि इस मुलाकात ने महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार की अटकलों को हवा दे दी है लेकिन अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है। और जो देरी हो रही है महाराष्ट्र में सरकार बनने में, उसे देखते हुए सोशल मीडिया में चुटकुले बनने लगे हैं। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में है। लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं बनती तब तक अनिल कपूर को ही मुख्यमंत्री बना दिया
जाए। अच्छा, नायक फिल्म का जिक्र हो
रहा है। नायक फिल्म से जोड़कर देख रहे हैं, जहां जिस उस फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था।
बहुत शुक्रिया सिंधु। और अब रुख मध्य प्रदेश का, जहां मुर्गी के अंडों की वजह से विवाद पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में आंगनवाड़ियों में अब खाने के लिए अंडे दिए जाएंगे ताकि कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके, लेकिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। भाजपा सरकार के समय में भी इस तरह की कोशिशें की गई थी लेकिन सरकार ने उस वक्त इसकी इजाजत नहीं दी थी। भोपाल से शुरू नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में सरकार ने आंगनबाड़ियों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अंडा देने का फैसला कर लिया है। इसकी शुरुआत इसी महीने से की जा सकती है। इस कदम के पीछे सरकार की सोच है कि इससे प्रदेश में कुपोषण को मिटाया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का कहना है कि पिछले 15 सालों में इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। सरकार पैसे खर्च करने के बावजूद कुपोषण मिटाने में कामयाब नहीं हुई है। इसलिए यह कदम उठाया जाना चाहिए।
अगर डॉक्टर जो एनआरसी में डॉक्टर हमारे बच्चों को पूछे तो बच्चों का इलाज करते हैं, अगर वो कहते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है तो हम करेंगे, हमारा विचार हो रहा और देंगे नहीं, सब जगह होगा। और जहाँ जिस ब्लॉक में हमारे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं तो उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर हो, तो इसके लिए जो भी चीज़ अगर हमें अच्छी बताई जाएंगी, डॉक्टर अच्छी बताएंगे, उन चीज़ों हम बच्चों को देंगे, अपने बच्चों को।
लेकिन सरकार के इस फैसले ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को नाराज कर दिया है। पार्टी का हर बड़ा नेता इस पर बयान दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि अंडे के बाद सरकार बकरे और मुर्गे का मांस परोसेगी। वहीं उन्होंने यह भी कह दिया कि एक दिन सरकार उन्हें नरभक्षी बना देगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है।
सरकार से इससे ज्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है? वो बच्चों को अंडा खिलाए, जो नहीं खाते उन्हें जबरन खिलाए, अंडे में नहीं होता हो कुपोषण दूर, मुर्गे खिलाएगी, बकरे खिलाएगी और जो कुछ बनेगा वो खिलाएगी। और भारत के जो संस्कार हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें मांसाहार निषेध है। हम जबरन किसी को नहीं खिला सकते, और यदि बचपन से ही हम ये सिखाएंगे तो बड़े जाके वो पता नहीं फिर वो गोश्त तो खाएंगे, नरभक्षी ना हो जाए।
लेकिन बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले इस फैसले को अच्छा बता रहे हैं। राइट टू फूड कैंपेन के लिए काम करने वाले सचिन जैन का मानना है कि कुपोषण से निपटने के लिए अंडा काफी अच्छा साबित हो सकता है। उनका कहना है कि उनकी संस्था इसकी मांग कई बरसों से करती रही है, लेकिन इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है।
मुझे लगता है कि ये विरोध ज्यादातर तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए है, इसमें सोशल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है किसी भी लेवल पर, क्योंकि फैक्ट्स तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की 50% पॉपुलेशन ऑन रिकॉर्ड जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वो ये है कि कंपैरेटिवली दूसरी जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो अपर कास्ट में जो भी कम्युनिटीज हैं, उनके कंपैरिजन में ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट में मैलन्यूट्रिशन का स्टेटस काफी हाई है और उनको कोई कल्चरल बैरियर नहीं है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को देखते हुए अंडे का प्रोविजन जो है वो अपने आप में एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और ये आर्ग्यूमेंट केवल जो अपोजिशन है वो केवल मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गेन के लिए है।
मध्य प्रदेश में 90,000 आंगनबाड़ियों में तकरीबन 70,00,000 बच्चे जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अति कुपोषित बच्चों की तादाद 1,30,000 है। ये बच्चे आदिवासी इलाकों में ज्यादा हैं, जिन्हें सही तरीके से पोषण आहार नहीं मिल पाता है। अगर सरकार अंडा देना शुरू करती है तो राज्य पर तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त बोझ आ सकता है। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
उधर बिहार में 2,50,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जिसे NIOS के नाम से जाना जाता है, वहां से कोर्स करके शिक्षक बनने की योग्यता हासिल की थी, लेकिन बिहार सरकार ने इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे नाराज प्रदर्शनकारी शिक्षक बीते 6 दिनों से अनशन कर रहे हैं, जो उनके मुताबिक आमरण अनशन होगा। पटना से नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
अपने नारों में सरकार से जवाब मांग रहे ये शिक्षक DLED पास शिक्षक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने शिक्षक बनाया है, लेकिन अब राज्य सरकार इन्हें प्रशिक्षित और योग्य मानने से यह कहकर इनकार कर रही है कि इन शिक्षकों ने सिर्फ 18 महीने का ही डिप्लोमा कोर्स किया है, जबकि NCTE के आदेश के अनुसार शिक्षक बनने के लिए कम से कम 2 साल की डिप्लोमा ट्रेनिंग जरूरी है। पिछले हफ्ते भर से आमरण अनशन पर बैठे शिक्षक कहते हैं कि आखिर उनकी क्या गलती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से स्वीकृत DLED कोर्स तो इसी वादे के साथ कराया गया था कि इस कोर्स को करने के बाद वे देश में कहीं भी शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे।
हमारा जो RTE 2009 जो जिस कानून का हवाला दे रही है बिहार सरकार, उसमें यह स्पष्ट रूप से चर्चा है कि द्विवर्षीय कोर्स होना चाहिए। अगर सरकार द्विवर्षीय कोर्स नहीं मान रही है तो हमें उस विद्यालय में भी पढ़ाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए 2 वर्ष की मान्यता चाहिए और सरकार 2 वर्ष मान नहीं रही है, तो हमारा वो भी नौकरी जाने वाला है जैसा सरकार मापदंड अपना रही है। जैसा देखिए, सरकार हमारे साथ सौतेली दोहरी नीति अपना रही है, क्योंकि हमारे साथ सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले, प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ाने वाले और प्रशिक्षित शिक्षकों ने भी इस ट्रेनिंग को पूरा किया, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्री वैलिड है, यही डिग्री करके वो उस विद्यालय में भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके वेतन को भी बढ़ाया गया, ग्रेड पे उनको दिया जा रहा है इसी मंथ से, पिछले मंथ से, और हम लोगों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने भी नहीं दिया जा रहा।
आखिर इन शिक्षकों के नियोजन में शामिल होने में क्या दिक्कत है, जबकि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर ही लिया है। DLED कोर्स के लिए जब विज्ञापन निकाला गया था तब उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि यह कोर्स NCTE से मान्यता प्राप्त है। अगर सच में NCTE ने DLED को मान्यता दी है तो फिर अब बिहार सरकार इस पर रोक क्यों लगा रही है? NCTE के सेक्रेटरी प्रभु कुमार कहते हैं,
जो हमारा NRC ने ऑर्डर इश्यू किया था NIUS को, उसका फैक्चुअल पोजीशन बताया है मैंने। हमने कहीं नहीं बोला है कि इनको नौकरी नहीं दी जाए, और हमने ये भी नहीं बोला है कि हाँ ये क्वालिफाइड नहीं है या अनक्वालिफाइड है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि उसको आपको ठीक से एग्जामिन करे। जब मैंने पत्र में इस तरह की कोई जिक्र नहीं की है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है?
बिहार में शिक्षकों के नए नियोजन की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आखिरी तारीख 9 नवम्बर है। जाहिर है इन शिक्षकों के पास वक्त कम है। आगामी 6 नवंबर को पटना हाई कोर्ट में भी इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होनी है। फिलहाल आमरण अनशन पर बैठे शिक्षकों के लिए उनकी योग्यता पर सवाल साख पर सवाल बन गया है। नीरज प्रियदर्शी, BBC पटना।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूं रेखा। भारत की स्टार महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को अगले वर्ष होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए 10 दिग्गज एथलीट एम्बेसडरों की सूची में जगह दी गई है। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा मैरी कॉम ग्रुप में एशियाई एथलीटों का भी प्रतिनिधित्व करेंगी। 36 साल की मुक्केबाज मैरी कॉम ने इसी वर्ष रूस में हुए विश्व चैंपियनशिप में कांस्य के रूप में अपना कुल 8वां पदक जीता था, जिसमें 6 स्वर्ण पदक हैं। वो इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक पदक पाने वाली सबसे सफल मुक्केबाज हैं। ओलंपिक खेलों की कांस्य विजेता होने के अलावा मैरी कॉम 5 बार की एशियाई चैंपियन भी रह चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और अब बात क्रिकेट की। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 नवंबर से दिल्ली में T20 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मुकाबलों की ये सीरीज 3 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगी, जिसमें पहला मुकाबला 3 नवंबर, दूसरा मुकाबला गुरुवार 7 नवंबर को और तीसरा यानी T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा, जिसमें भारत की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। वहीं बांग्लादेश के कप्तान होंगे महमूदुल्ला। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर तक होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दूसरा अवसर है जबकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन किसी टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है। इस स्टेडियम में खेले गए पिछले 5 वनडे, 1 T20 और एकमात्र टेस्ट में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी। और उधर ओमान ने क्वालिफायर में हांगकांग को 12 रनों से हराकर T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, जबकि स्कॉटलैंड ने UAE को 90 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट में जगह बनाई। ओमान और स्कॉटलैंड से पहले नामीबिया, नीदरलैंड, पपुआ न्यू गिनी और आयरलैंड भी 2020 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और UAE में चल रहे टूर्नामेंट में खिताब जीतने की दौड़ में बने हुए हैं। खेल समाचारों में आज इतना ही,
और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार पुनः सिंधुवासिनी से।
BBC समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ औपचारिक तौर पर महाभियोग की जांच शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा विच्छंट बताया है। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए राजनीतिक सुधारों और जल्दी चुनाव की पेशकश की है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के प्रमुख डॉक्टर मार्क शिप का कहना है कि लगातार फैलते अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की वजह से दुनिया के लगभग 1/4 सूअरों की मौत हो जाएगी। इस्लामिक स्टेट ने अपने नेता अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की है और उनके उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। IS ने बताया है कि अबू इब्राहिम अल हाशमी उसके नए नेता होंगे। स्पेन की एक अदालत ने 14 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार करने वाले 5 पुरुषों को बरी कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि दक्षिणी अफ्रीका में 4.5 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।